इसलिए ऐसा अनुष्ठान फांस कर दिया जाता है, जिससे कि 7 दिन तक गृहस्थ पक्ष लोग अपना समय लेकर के अवकाश से श्रीमद् भागवत का श्रवण जितने भी मंगल अनुष्ठान हैं श्रीमद् भागवत के श्रवण और कीर्तन के बराबर कोई भी अनुष्ठान मंगलदायक नहीं है। सात दिन में भागवत नहीं होता, इसके एक एक श्लोक में श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक क्या, एक एक इसके शब्द में जैसे निगम कल्प रूप, एक चांस कला उनका कृष्ण तू भगवान बदंति तत्व विद सत्तम जग ज्ञान भक्त। इन एक एक श्लोक के एक एक अक्षर में ही वेद वेदांत उपनिषद श्रुति उपनिषद इत्यादि पुराणों के सबके सार उसमें निहित हैं। हम लोग के गुरु जी के गुरु जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जिस समय अविभक्त बंगला था, केवल पहले इस श्लोक पर उन्होंने करीब करीब 1.5 महीने 2 महीने केवल एक ही श्लोक पर किया और उसमें समस्त भागवत भी आ गया और उनका पूरा नहीं हुआ 1 महीने। इसलिए यहाँ पर तो सब समय होता है और बहुत सुंदर से होता है तो उतना समय लोगों को। प्राचीन काल की बात है, कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण के अंतर्ध्यान होने पर उद्धव जी उनके आदेश से बद्रिकाश्रम क्षेत्र में चले गए और वहां पर बद्रिकाश्रम में रह करके भागवत का चिंतन करने बिपिन और मैत्रेयी का भी वहीं पर संवाद हुआ भागवत के चलते। विदुर जी के 2 रूप उनके उद्धव जी के 2 रूप हैं। एक रूप से वो बद्रिकाश्रम रहते हैं और दूसरे स्वरूप से वो वृंदावन में रहते हैं। कहते हैं श्री महाभारत में कहीं दो क्षेत्र हैं, एक साधन क्षेत्र है और एक साध्य क्षेत्र। वृंदावन साध्य क्षेत्र है और उस समय में बद्रिकाश्रम साधन का क्षेत्र, नर नारायण भी वहां पर साधन करते हैं, भागवत इत्यादि का वचन पाठन, इसलिए एक स्वरूप में वहां आकर के दूसरे स्वरूप से उद्धव जी ब्रज में गोवर्धन के पास में नागकुंड के पास में कुसुम सरोवर के सन्निकट श्याम कुटी के पास में वो रहते हैं, तीर्ण और गुण लता होकर के रहते हैं। तो जब कृष्ण का अंतर ध्यान लीला हो गई उस समय में चारों तरफ में द्वारका भी वीरान हो गया और उधर पहले से तो ब्रजभूमि वीरान ही दिख रही है। धाम तीन प्रकार के, धाम की तीन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, एक प्रकट लीला का, एक अप्रकट लीला का और एक यथा स्थान करती है। ये अभी जो दृश्यमान, अभी हम लोग इसको देखते हैं दृश्यमान, इसमें वृंदावन में जो कृष्ण की प्रकट लीला हुई थी अभी नहीं दिख पड़ी, शून्य शांत चारों तरफ मौन भूमि से दिख पड़ी, किंतु वहां लीला पर ये चल रही है। कोई कोई भाग्यवान जीव उसका दर्शन कर पाता है सभी लोग, और जिस समय द्वापर युग के अंत में जब कृष्ण की लीलाएं प्रकट हुई थी और बाल्यकाल से लेकर के किशोर अवस्था तक जो लीलाएं हुई बैजा हुई पर लीलाएं हुई थी वो प्रकट की जा, इसके बाद वो मथुरा मिली जाए, फिर वहां से द्वारका मिली जाए, तो वो प्रकट लीला और एक अप्रकट लीला गुरु बैकुंठ वृंदावन में वो लीलाएं सब समय चलती है, वही लीलाएं यहाँ पर अभी भी चल रही है, इसको अप्रकट कहते हैं। और अभी जो हम देखते नहीं है ये दृश्यमान, तो जिस समय कृष्ण चले गए द्वारका पूरी प्लावित हो गई और यहां पर भी शून्य शांत दिखने लग गया। कुछ दिनों के बाद में परीक्षित महाराज हस्तिनापुर से यहां आए, यहां आकर के देखा उस समय बज्रनाथ यहां के राजा थे, उन्होंने इनको राजगद्दी पर बिठाया, उनसे पूछा कि आप कुशल से हैं? हाँ आपकी कृपा से मैं कुशल से। उन्होंने कहा कि आपके पूर्वजों ने विशेष करके कृष्ण ने हमारे ऊपर और हमारे वंश के ऊपर में प्रचुर कृपा, इसलिए इस वंश का और तुम लोगों का मैं ऋणी हूं। परीक्षित जी ने कहा मैं तुम लोगों की क्या सेवा करूं? उन्होंने कहा कि आप हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे गुरुजन हैं, मैं यहाँ पर राज्य में हूँ, यहाँ मथुरा का, किंतु कोई भी जनता नहीं है, बहुत थोड़े से हैं और बिना प्रजाओं का राज्य होता नहीं। मैं समझता कि सुन्नशान जंगल प्रदेश में मैं बैठा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए यही बतला। उन्होंने शांडिल्य ऋषि को बुलाया, शांडिल्य ऋषि राजा नंद बाबा के पुरोहित थे। उन्होंने आते ही कहा तुमको दिख नहीं पड़ता है, ये तो सारी की सारी ब्रजभूमि यहाँ पर रसमयी है, दिख नहीं पड़ती किंतु है, तो तुम एक बात करो। परीक्षित महाराज के संपर्क से यहाँ पर कृष्ण की जितनी भी लीला थलियां हैं वृंदावन गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड कोकिल वन और द्वादश वन है, उन सब वनों में उनके उनकी लीला स्मृति को स्थापन करो, कहीं सरोवर बनाओ, कहीं मंदिर बनाओ, जैसे वृंदावन में गोविंद जी का, गोपीनाथ जी का, मदन मोहन जी का, यहाँ पर केशव देव जी का, गोवर्धन में हरिदेव जी का, काम वन में उनकी लीलाओं के चित्र के अनुसार वहां पर कामेश्वर महादेव, यहाँ पर अंगेश्वर महादेव, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, ऐसे सब लीला स्मृतियां कृष्ण की जितनी है, जितने या तो कुंड के रूप में, मंदिर के रूप में, पदचिन्ह के रूप में, और मैं इंद्रप्रस्थ से दिल्ली से हजारों शेखों को मैं ले आता हूं और यहीं पर बसाऊंगा, और ब्रजमंडल में जितने ब्राह्मण हैं अच्छे अच्छे विद्वानों को ले आता हूं और यहीं पर बसाऊंगा, वृंदावन में, यहां में और जो लीला क्षेत्र, और प्रकट लीला की भांति में तुम अनुभव करो, ऐसा कर करके परीक्षित महाराज जी सब लोगों को लेकर के यहाँ पर बसाया, नई रूप से मथुरापुरी बसी, वृंदावन बसा, और सब लीला चिन्ह जितने क्षेत्र हैं, राधा कुंड इत्यादि और सब जितने स्थान हैं, वो सब लोगों को फिर से पुनरुद्धार किया। उन्होंने क्या किया, कहा जी एक बात करो, तुम उद्धव जी का दर्शन करो। तो उद्धव जी कहाँ है, वृंदावन में, गोवर्धन में, तुम अपनी माताओं के साथ में और अपने बंधु बांधवों के साथ में चलो, कुसुम सरोवर, हम भी चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे, वहां पर रोहिणी इत्यादि सबका नाम है, कृष्ण की जितनी भी 16108 महर्षियों के, अर्थात कृष्ण जब प्रकट हो गए तो किसी किसी की ये धारणा है, जो जितनी महर्षियां थी उसमें कुछ तो उनके साथ में सती हो गई, उनके साथ ही साथ सीता पर भस्म हो गई, और कुछ को जिसको अर्जुन ला रहे थे उनको गोप कुमारों ने लूट लिया, ग्वालों, किंतु ऐसी बात नहीं, नॉट ये तो केवल एक मैस्टरिज्म हुआ, सब गोपी उनकी जो पत्नियां थी वो सब मथुरा में आई थी, नित्य लीला में भी है और प्रकट लीला में भी है, दृश्यमान में कहीं दिखती हैं कभी नहीं दिखती, किंतु वो सभी थी, उन सब लोगों को लेकर के, बंधु बांधवों को लेकर के परीक्षित महाराज जी और ये बज्रनाथ वहां पर तो कुसुम सरोवर, और सबने मिलकर के सामूहिक रूप से कीर्तन करना आरंभ किया। वहां पर कीर्तन करेंगे और उद्धव जी आएंगे तो उनके मुख से हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे। होने लग गया कीर्तन, कीर्तन में देखा क्या, इंद्र स्वर्ग से आए, घर में अर्जुन इत्यादि सब पांडव लोग आए और आकर के मृदंग इत्यादि बजाने लगे, और साथ ही साथ में जितने ऋषि महर्षि थे वो लोग उपस्थित हो गए। थोड़ी देर के बाद ही में उद्धव जी पास ही से वन में से झाड़ियों में से निकले और एकदम कीर्तन करते हुए एकदम विभोर हो गए। उनको देखते ही एकदम नवजीवन सब में संचार हो गया। सब लोगों ने उद्धव जी को प्रणाम किया। करने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग राधा कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, ब्रजभूमि का दर्शन करना चाहते हैं और श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इस समय श्रीमद् भागवत अतिरिक्त किसी प्रकार से हम लोगों का कल्याण नहीं हो सकता, ऐसा समझ करके उनको उन्होंने कहा। उन्होंने श्रीमद् भागवत एक महीने तक श्रीमद् भागवत का पाठ किया पड़ा। उसमें कृष्णचंद्र जी समस्त गोपियों के साथ में कभी कभी प्रकट हो जाते और अपनी लीलाओं को सबको दर्शन करा देते। उस ऐसे सुंदर रूप से एक महीने तक वहां पर बसा हुआ। इसके बाद में एक महीने के बाद में उद्धव जी का जब भागवत समाप्त हो गया, सभी लोग कृतार्थ हो गए और इसके बाद में सब लोग अपने अपने स्थानों में लौट गए। उसी के बाद में परीक्षित महाराज जी को उन्होंने आदेश दिया था सांडिल्य जी ने, कलियुग चारों तरफ में है इसलिए कलियुग न प्रवेश करने पाए कथाओं में, इसलिए कलि को शांत करने के लिए, उसको दमन करने के लिए आप कोई व्यवस्था करें। उसी के समय में वही व्यवस्था में थे, कलि से उनका भेद हुआ और कैसे वो अभिशप्त हुए और अभिशप्त होने के बाद में कैसे सुखदेव गोस्वामी उनकी राजसभा में आए और 7 दिनों तक प्राय उपवेशन किया, बिना खाए पिए सोए आराम किए, बड़ी श्रद्धा के साथ में 7 दिन तक भागवत का श्रवण किया। ये सभी आप लोगों को पता है। श्रीमद् भागवत के पाठ करने से कली का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा, सर्दियों को डस नहीं सका, ऊपर से लोगों को दिख पड़ा कि ये सांप उनको डस रहा है, किंतु वो तो एकदम कहां अपना चित्त कृष्ण में और राधा जी में लगा करके संपूर्ण से अपराध शरीर से अपने गोलोक वृंदावन धाम में वो उपस्थित हो गए। ये किसी को दिख पड़ा, किसी को नहीं दिख पड़ा। उसी तरह से जो श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करते उनका आत्मा का भी कल्याण होगा, साथ ही साथ में क्रमशः कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करके गोलोक वैकुंठ धाम की उनकी प्राप्ति और अपने अपने स्वरूप के अनुसार में जिस जिस तरह से वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं उसमें उनकी प्रतिष्ठा। आप लोगों ने इसके संबंध में महात्मा के संबंध में वो क्या गोकर्ण धुंधकारी इत्यादि की कथाएं भी हजारों बार सुनी है, मैं उसका पुनः प्रवर्तन नहीं करना चाहता और बल्कि हम लोगों के दृष्टि से धुंधकारी और उनका श्रवण करना कुछ सहायक था। उनको कृष्ण प्रेम हुआ कि नहीं ये पता नहीं, किंतु परीक्षित महाराज जी को हुआ ये गारंटी, ऋषि लोगों को हुआ, क्योंकि उस नियत से उन्होंने श्रीमद्भागवत का श्रवण नहीं किया। आप लोग एक कोई उद्देश्य ले लेंगे, देखिए इस उद्देश्य से हम श्रीमद्भागवत श्रवण करें, पापों से उद्धार होने के लिए नहीं। ब्रज में, मथुरा में या ब्रज प्रदेश में कहीं भी किसी का जन्म हो या कहीं दूसरी जगह की रहने वाले भी हो करके, रहने वाली हो करके, भजन करने की दृष्टि से वृंदावन में मथुरा में आए अथवा यहाँ पर शादी हो गई या किसी रिलेशन से यहाँ मथुरा में आना हो गया, तो समझे कि उसके पाप ताप अब नहीं है। तो भी यदि कोई पाप करता है तो वो वज्रदेव के समान हो जाता है, वो सजी नहीं जाएगा। इसलिए मथुरा में कभी भी पाप की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, और वैसे यहाँ पर कोई पाप ही नहीं आ सकता है। इसलिए उनको पाप ताप दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करना है, उनको साधारण रूप से कृष्ण प्रेम के लिए ये भागवत सुनना है, जो जन्म जन्मांतर के लिए कृष्ण के चरणों में हमारी यह सुखी भक्ति हो और उनकी प्राप्ति हो। बल्कि उससे भी बढ़कर के गोपी प्रेम, गोपी प्रेम का उद्देश्य होकर के गोपियों ने कृष्ण के प्रति जैसे सेवा की थी, इस प्रकार से। और इस गोपी प्रेम में भी कृष्ण ने गोपियों की कैसे आराधना की, राधा जी की आराधना की, इस विषय को समझना है। किंतु ये 7 दिन में, 9 दिन में, 1 महीने में ये सब चीजें नहीं होंगी, ये जो मैंने भाव बताया। सब लोग कृष्ण की आराधना करते हैं। हमारे उद्धव जी भी कहते हैं कि गोपियों ने कृष्ण की आराधना कैसे की, घर बार सब छोड़ दिया, पति छोड़ दिए, आर्य धर्म छोड़ दिया, भेजे मुकुंद पदविंद सुतभि प्रविज्ञान, उन्होंने कहा आशामहो चरण रेण विषाम हम श्याम वृंदावने किमत गुलमल औषधी नाम जह दुस्तजन आर्य पथन चहिस्वा सुस्तज आर्य पथ गृह की श्रृंखलाएं बेड़ियां माता पिता गुरुजनों का की आज्ञा लोक लज्जा धैर्य सबको छोड़ करके कृष्ण की उन्होंने आराधना। उद्धव जी कहते हैं किंतु शास्त्र में स्वयं कृष्ण जी ने कहा मैं गोपियों तुम्हारा भजन करने के लिए मैं अंतर ध्यान छोड़े था, मैं तो तुम्हारे पास ही में घूम रहा था, तुम्हारी उन सुंदर भावनाओं का रसास्वादन कर रहा था और मैं तुम्हारा भजन कर रहा था। भजताम तिरोहित, कृष्ण ही भजन कर रहे हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत का ये तात्पर्य है। कृष्ण ही राधा जी की आराधना, गोपियों की आराधना करते हैं, किंतु ये बहुत ऊंची भावना है, साधारण लोगों के लिए समझ में आना बहुत कठिन, किंतु भागवत का उद्देश्य ये। इसलिए आप बड़े प्रेम के साथ में श्रीमद् भागवत श्रवण करें। मेरे लिए 3 घंटा बोलना बहुत मुश्किल है, इसलिए शुभानंद जी भागवत भूषण है, बहुत दिनों तक भागवत का अध्ययन किया है। साधारण में जो पाठक पाठ करते हैं उनके जैसे नहीं ये लोग हैं, न किसी दान की जरूरत है, न दक्षिणा की जरूरत है, न किसी चीज की जरूरत। आप लोगों का भी कल्याण हो, वैसे हम लोग कभी भी सप्ताह इत्यादि का पाठ नहीं करते क्योंकि उसमें सकाम भावना है। आप लोग कोई भी सकाम भावना से यहाँ पर मत सुनेंगे, कृष्ण प्रेम के लिए ही समर्थन जैसा मैं तो उसी रूप में ये भागवत का पाठ करेंगे और पाठकों से हम लोगों का भागवत का पाठ कुछ विलक्षण है उसी रूप में आप लोग इसका श्रवण करें। मैं समझता हूँ कि यदि इस प्रकार से हम लोगों का 9 दिन का है, मेरी इच्छा थी कि 12 दिन का हो, किंतु लोगों को कुछ असुविधा थी इसलिए 9 दिन के लिए हम लोग ने रखा है। 9 दिन में आप लोग खूब अच्छी तरह से सुनेंगे। सवेरे 7 बजे हम लोग आरंभ करेंगे, 10 बजे समाप्त करेंगे, शाम को 4 बजे आरंभ करेंगे, 7 बजे 7:15 बजे तक हम लोग। नृसिंहदेव जी से प्रार्थना करता हूँ, गिरिराज जी से निर्विघ्न हम लोगों का यह समाप्त हो और राधा विनोद बिहारी जी, चैतन्य महाप्रभु, गिरिराज जी इसके स्वयं श्रोता है। जहाँ पर हरि कथाएं होती हैं यही मूल श्रोता है, अपनी कथा अपने ही सुनते हैं और सुन करके उनके हृदय में प्रवेश करके उनका कल्याण करते। उसी तरह से ये मूल श्रोता है, सन्यासी लोग हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, योग्य युग ब्रह्मचारी सन्यासी श्रोता भी उच्च कोटि के हैं। यहाँ मथुरा के वृंदावन और सब जगह ऐसे श्रोता भी नहीं मिलते हैं। तो हम लोग श्रोताओं को और पहले ठाकुर जी को, गुरु जी को, देखो एक बात याद रखना, भगवत भजन में गुरु ही मूल चीज है। कृष्ण इत्यादि नहीं है, पीछे हैं। इसलिए गुरु में जिसकी निष्ठा है वो तो पार कर जाएगा, वो तो भागवत पुराण का अधिकारी है। भागवत के पाठक कौन है? सुखदेव गोस्वामी। श्रोता कौन है? 60,000। ये सबके गुरु हैं। भागवत की भी गुरु परंपरा है। ये भागवत यहाँ की नहीं है, गोलोक वृंदावन की है। राधा कृष्ण गोपियों के लिए हृदय में श्रीमद् भागवत है। सुखदेव गोस्वामी उनके परिकर हैं। सुखदेव गोस्वामी वहां से श्रीमद् भागवत लेकर के आए, गुरु परंपरा की धारा से। कृष्ण ने दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी ने दिया नारद जी को, नारद जी ने दिया व्यास जी को, व्यास जी को एक एक पर हाथ पर लेते गए, नहीं तो वहां से गिरता तो फट करके चकना चूर हो जाता, इसलिए वहीं से लेते आए। और एक दूसरी भी परंपरा है, वो परंपरा कैसे है? नारायण से। नारायण से कौन ऋषि? कश्यप, बात्स्यायन ऋषि, संख्यान ऋषि। और फिर उनसे परंपरा से वो बृहस्पति जी और बृहस्पति से उद्धव जी, इस प्रकार से एक दूसरी परंपरा। तो इस तरह से इसकी बहुत सी परंपराएं, इसलिए गुरु ही मुख्य है। इसलिए गुरु में खूब निष्ठा रखो और गुरु के निष्ठा से ही ये भागवत हमारे हृदय में। इसलिए आप लोग खूब प्रेम के साथ में श्रवण करें। अब ये शुभानंद ब्रह्मचारी जी आपको भागवत पंचाकल्प पतितानां पावन व्यास जी को बतलाया, आपने वेदों का विभाग किया, 18 पुराण बनाए, 18 उप पुराण बनाए, 18 शाखा पुराण आपने बनाया, महाभारत की रचना की, वेदांत सूत्र की आपने रचना की, और प्राणियों के लिए जितने प्रकार के अर्थ धर्म काम और मोक्ष की बातें हैं आपने सब बतलाया, किंतु आपका चित्त खिन्न क्यों है, आप उदास क्यों है? आपको तो प्रसन्न रहना चाहिए। व्यास जी ने कहा, मैं रोगी हूं, आप वैद्य हैं, मुझे इसी का पता नहीं लग रखा। मैंने सब कुछ जगत में जो कुछ देना था मैंने दिया, प्राणियों के कल्याण के लिए मैंने इतने परिश्रम किए, किंतु मेरा खुद ही चित्त प्रसन्न नहीं हुआ तो और लोगों का क्या होगा। आप कृपा करके बताइए हमारे अंदर में क्या टूटी रह गई। उन्होंने संक्षेप में यही कहा, आपने समस्त शास्त्रों का प्रणयन किया, सबको शिक्षा तो दी, किंतु आपने ये नहीं बतलाया जो जीव की अंतिम जो गति है कृष्ण के चरणों में प्रेमा भक्ति, या कृष्ण को जो कैसे जीव पाते हैं, ये आपने नहीं बतलाया। आपने एक चक्रव्यूह पैदा कर दिया जिससे आदमी धर्म अर्थ काम और मोक्ष के चक्कर में पड़ा रह जाता है और इसे कभी निकलता नहीं, मोहग्रस्त हो जाता है। इसलिए आप ऐसा कीजिए, कृष्ण की ऐसी सुंदर मनोहारी लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वेदों में उपनिषदों में पुराणों में अन्यत्र कहीं वेदांत इत्यादि शास्त्र में कहीं नहीं वर्णन किया गया, सूत्र रूप से वर्णन किया गया है, किंतु आपने वर्णन नहीं किया, उसको वर्णन कीजिए। आपने ये कहीं नहीं कहा कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, लोग देवता देवियों की बहुत तरह से आराधना करते हैं, शंकर जी की आराधना करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, देवी की आराधना करता है, और आपने उनको प्ररोचना दिया कि ये सब करो। आपने ये नहीं कहा जिससे इससे फिर तुम जहां जाएगा स्वर्ग में या अपने पितृलोक में यहाँ तक कि सप्तलोक में जाएगा, वहां से फिर तुमको लौट करके आना पड़ेगा। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम खीने पन्ने मर्तलोकम विशंति, तुम लोग फिर वहीं से जन्म लेगा और फिर 84 लोग जन्मों में भ्रमण करेगा और फिर वहां जाएगा, फिर वहां से आएगा। आपने छुटकारा का उपाय नहीं बतलाया, नित्य रूप में कृष्ण को कैसे पाया जाता है। आपने कृष्ण की मनोहारी लीलाओं का वर्णन नहीं किया, आपने रासलीला का कहीं वर्णन नहीं किया, गोपियों ने कृष्ण को कैसे प्यार किया जो कृष्ण उनके सेवक बन गए, उनकी आराधना करने लगे गोपियों की, आपने तो ये कहीं लिखा नहीं, कहीं बतलाया नहीं। इसलिए आप ऐसी सुंदर कृष्ण की मनोहारी लीलाओं को बतलाइए और ये बतलाइए कि इन देवता देवियों की उपासना से कृष्ण की आराधना सर्वश्रेष्ठ, कृष्ण की भी आराधना करने से नहीं होगी, राधा और कृष्ण की आराधना करनी होगी, राधा कृष्ण की आराधना से भी बराबरी करने से नहीं हो। जब आप श्रीमती राधिका और गोपियों के अनुगत्य में कृष्ण की और जुगल किशोर की आराधना करेंगे तभी आपका यथार्थ कल्याण होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत को ऐसा प्रकाश किया। उन्होंने कहा कि तो मैंने तो कभी देखा नहीं सुना नहीं, कैसे वर्णन करूं। अच्छा तुम समाधिस्थ हो। कृष्ण का नाम स्मरण करते 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 वो समाधिस्थ हो गए और उन्होंने हाथ में एक और रखे हुए आंवला की भांति देखा। कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण मथुरा गए, वहां पर भी योग माया के गर्भ से, यशोदा के गर्भ से कृष्ण वहां पर ठीक यहां पर जन्म लेते हैं, वहां पर भी जन्म लेते हैं। पुतना इत्यादि को मारा, इसके बाद में और बड़े हुए, असुर सबको संहार किया, इसके बाद में किशोर अवस्था में पहुंचे, कैसे कैसे रास लीलाएं हुई, कैसे कैसे वो द्वारका में गए, मथुरा में आए, कंस को मारा, फिर द्वारका में गए, फिर अंतध्यान। इन सब लीलाओं का वर्णन उन्होंने जब देखा और देख करके तब उसी को जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने लिखा। ये एक ऐसा भागवत श्रीमद् है, श्रीमद् भागवत है, जिसके श्रवण करने से, मनन करने से और वैसे ही आराधना करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वर्ग देवी लोक देवलोक सब को पार करके, यहाँ तक कि वैकुंठ को पार करके, उससे भी पार करके रामचंद्र जी का लोक, उससे भी पार करके द्वारका मथुरा को पार करके ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा मिली, यही जीव की अंतिम गति है और कहीं शास्त्र में नहीं बताया गया। इस प्रकार से इसमें बताया और भी उन्होंने जो उपाख्यान पहले स्कंद में बतलाया, इसमें एक संदेह होता है, संदेह ये होता है भीष्म पितामह जी कितने बड़े धार्मिक थे, इतने धार्मिक कि कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी उनकी प्रतिज्ञा रखने के लिए, तो उन्होंने दुर्योधन का पक्ष क्यों लिया और दुर्योधन के तरफ से आकर के पांडवों से लड़े, जो परम भगवत भक्त हैं, पांडवों से नहीं कृष्ण से लड़े, क्यों लड़े? भीष्म पितामह और तो कुछ नहीं कहा सफाई में, किंतु ये कहा कि दुष्टों का अन्न मैंने खाया था इसलिए मेरी दुर्बुद्धि हो गई थी, इसलिए मैंने इनके तरफ से लड़ा और जब सरसैया पर मैं चढ़ा तो मेरे रक्त तप्त जितने थे, खाया पिया सब कुछ जब निकल गया खत्म हो गया तो मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। दुष्टों को अन्न खाने से ऐसी ही दुर्गति होती है, भगवान का स्मरण नहीं रहता, भगवान की कथा में मन नहीं लगता और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। आप लोग भी दुष्टों के अन्न से बचने की चेष्टा करें। ये तो उन्होंने कहा किंतु असल बात उन्होंने छिपाई, कुछ छिपाई क्या, यदि भीष्म पितामह जी दुर्योधन का पक्ष नहीं लेते तो युद्ध ही नहीं होता और युद्ध नहीं होता तो इन दुष्टों का संहार नहीं होता। केवल मात्र भीष्म पितामह के बल पर ही इसने दुर्योधन ने हट करके युद्ध आरंभ किया और कृष्ण ने इसी का सुयोग लेकर के अपनी योग माया की बुद्धि से भीष्म पितामह के बुद्धि को भी भ्रमित रखा। यदि ये नहीं रहेगा उनके तरफ में तो युद्ध होगा नहीं, आज ही वो दुर्योधन सरेंडर कर देगा, बस खत्म हो जाएगा, दूसरों का संहार नहीं। इसलिए इन दुष्टों का भी संहार करना है, संसार में जितने दुष्ट हैं उनको भी संहार करना है, और यहाँ तक कि हमारे कुल में हमको भी भगवान नहीं जानते, हमारी भी परवाह नहीं करते, सोचते कि हमारे जैसा ही एक है, हमसे जरा बलवान है, हमारी भी उपेक्षा करते हैं, उन लोगों को भी संहार कराना है। और तब विश्व में शांति दे करके श्रीमद् भागवत को प्रकाश करके और हम तब जाएंगे। इसलिए चलाकी चतुराई से कृष्ण ने ही ये सब कुछ किया। ये जितना महाभारत का युद्ध हुआ किसने लड़ा? केवल अकेले कृष्ण ने। जिस समय ये महाभारत युद्ध होने वाला था उस समय में भीम का पुत्र हिडंबासु घटोत्कच और घटोत्कच का एक पुत्र था
बर्बरी
उसका नाम था। बर्बरी छोटा सा शिशु था, वो आया वहां कृष्ण को प्रणाम किया, बोला कि महाराज कृष्ण जी आप आदेश दें, मैं पांडवों के साथ में युद्ध पांडवों की तरफ में रहूंगा, युद्ध करने की नौबत नहीं आएगी। तो क्यों? एक बाण से मैं जितने यहां पर उपस्थित हैं सब लोगों को समाप्त कर दूंगा, दूसरा बाण उठाऊंगा ही नहीं। पूछा कृष्ण ने किसी से, अच्छा ये महाभारत युद्ध हो रहा है, भीष्म तुम कितने दिनों में ये युद्ध जीत लेगा और सब वीरों को परास्त कर देगा? उन्होंने कहा 10 दिन में सबको खत्म कर दूंगा।